मेरी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، السلام، میری ذمہ داری آج انشاءاللہ عزوجل ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضری ہے۔ درود پاک کی فضیلت سن لیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، اے لوگو، بے شک تم میں سے قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، بندہ یعنی جب دنیا میں آتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ بالکل ایک سمجھ لیں کہ بے بسی والی کیفیت ہوتی ہے، شعور بھی نہیں ہوتا، اور ساتھ ساتھ وہ کمزور بھی بہت ہوتا ہے۔ وہ دوسروں کے رحم و کرم پر ہوتا ہے، ماں باپ کے رحم و کرم پر ہوتا ہے، پھر ماں باپ جو ہے وہ اس کو بڑی ہی محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ پالتے ہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت و شفقت ماں باپ کے دل میں رکھی ہے، اپنی جان کو مشقت میں ڈالتے ہیں، اپنے بچے کی پرورش کرتے ہیں۔ آہستہ آہستہ بچہ جو ہے وہ جب گرو اپ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، یعنی پہلے بیٹھنا سیکھتا ہے، پھر کھڑا ہونا سیکھتا ہے، پھر چلنا سیکھتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کا جو عقل و شعور کی منازل بھی وہ طے کرتا ہے۔ یعنی پہلے نا سمجھ ہوتا ہے، پھر وہ سمجھداری کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ چھ سات آٹھ سال کا بچہ ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں، یعنی اس کو نالج حاصل ہوتا ہے، وہ سمجھدار ایج کی طرف، میچورٹی کی طرف جاتا ہے۔ 11 12 13 سال کی عمر میں اچھا خاصا سمجھدار ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر وہ جب نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، 15 سال 17 سال جو ہے، 13 14 سال سے لے کے 17 18 20 سال کی عمر جو یہ ہے، اس میں عقل کی پختگی کے ساتھ ساتھ، شعور کی پختگی کے ساتھ ساتھ، جو یعنی سمجھدار بھی وہ ہو چکا ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے جو جسم ہے وہ بھی مضبوط ہو رہا ہوتا ہے، اس کے اعضاء بھی مضبوط ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب وہ ہوتا ہے 20 22 سال کی عمر میں، تو اب وہ اچھا خاصا سمجھدار بھی ہوتا ہے، اور جسمانی لحاظ سے بھی اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، اس کے اعضاء مضبوط ہوتے ہیں۔ یعنی یہ وہ ایج ہے جسے پرائم ایج کہا جا سکتا ہے۔ یعنی پوری آپ اگر دیکھیں، یعنی شیر خارگی سے پیدائش کے بعد، شیر خارگی دودھ پینے کی عمر، اس کے بعد آگے بچپن ہے، پھر لڑکپن ہے، لڑکپن سے آگے نوجوانی ہے، نوجوانی سے آگے پھر جوانی، اور جوانی کے بعد پھر جو ہے وہ ادھیڑ بن، ادھیڑ عمر، اور پھر بڑھاپا۔ ان تمام سٹیجز کو اگر دیکھا جائے، عمر کے تمام مرحلوں کو دیکھا جائے، تو سب سے جو ایک پرائم ٹائم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جوانی کا۔ یہ ایج کون سی ہوتی ہے؟ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہ اللہ علیہ کی مایہ ناز تصنیف فیضان سنت، اس میں لغات کی کتب یعنی ڈکشنریز کے مطابق بالغ ہونے سے لے کر 30 یا 40 سال کی عمر تک بندہ جوان رہتا ہے، اور 30 یا 50 برس جوانی اور بڑھاپے کا درمیانی وقفہ، یعنی ادھیڑ، اور اس کے بعد بڑھاپا آ جاتا ہے۔ 30 سے 50 تک یا 40 سے 50 تک یہ ادھیڑ عمر، اور 50 کے بعد پھر آگے بڑھاپے کی طرف سفر۔ تو یہ جو ایج ہے بلوغت کے بعد سے لے کر تقریباً 30 35 40 سال تک کی عمر، یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ جس میں سمجھدار بھی ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اعضاء میں بھی طاقت ہوتی ہے، حسن و جمال بھی ہوتا ہے، بندہ یعنی جسمانی طور پر بھی صحت مند ہوتا ہے، ساتھ ساتھ عقل و شعور کی منازل بھی وہ طے کر چکا ہوتا ہے۔ یہ جو پرائم ایج ہے، اس کو کیسے گزارنا ہے، اس کے حوالے سے میری ذمہ داری کیا ہے بطور، یعنی میں جوان ہوں تو مجھے اپنی جوانی کیسے گزارنی ہے۔ عموماً ہمارے معاشرے میں جوانی کے حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ جوانی جو ہے وہ بندہ انجوائے کرے، دنیا کی لذتوں کو انجوائے کرے، جو نعمتیں ہیں ان کو انجوائے کرے۔ تو یہ ایک کنسیپٹ ہے، اور اس کنسیپٹ کے تحت پھر ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو اپنی زندگی کے مقصد سے غافل ہو جاتی ہے، ये बात हर जो ज़ी शऊर है, जो अक्लमंद है, वो ये समझता है कि प्राइम टाइम में प्राइम काम किया जाता है, यानी जब आपके पास सबसे बेहतरीन जो आपका आपके पास वक्त है उसमें आप सबसे बेहतरीन काम करेंगे। आप बेहतरीन वक्त में लायानी काम में अगर पड़ जाएंगे तो क्या होगा कि आपकी एनर्जी ज़ाया हो जाएगी, और फिर अगर आप बाद में जब जहनी तौर पर थक जाएं या जिस्मानी तौर पर थक जाएं, तो अब अगर आप अहम काम को लेंगे तो आप उसको सही तौर पर सरंजाम नहीं दे सकेंगे। तो प्राइम एज जो बुलूगत के बाद से लेकर 30, 35, 40 साल की ये उम्र है, ये प्राइम एज है। इसमें हमें क्या करना है, इस जवानी को कैसे गुजारना है, इस हवाले से मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है, एक जवान किस तरह अपनी जवानी को गुजारे। तो प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो ज़िंदगी का मकसद है मदनी चैनल के नाज़रीन, ये वैसे तो यानी जब से शऊर मिले वहाँ उस वक्त से लेकर मरते दम तक अल्लाह तबारक व ताला हमें अपनी ज़िंदगी के मकसद को पूरा करने की तौफीक बख्शे, इससे यानी हम एक लम्हा भी, एक लहजा भी, चंद सेकंड्स के लिए भी इससे गाफिल ना हो। लेकिन बतौर ख़ास जो एक ज़िम्मेदारी बनती है वो ये है कि हम अल्लाह तबारक व ताला ने जिस मकसद के लिए हमें पैदा किया है, अपनी इबादत के मकसद के लिए पैदा किया है, अल्लाह तबारक व ताला ने हमें यूं ही बेकार नहीं बनाया। अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि क्या तुम गुमान करते हो कि हमने तुम्हें यूं ही बेकार बनाया और तुम्हें हमारी तरफ लौटना नहीं, अबसा इरशाद फरमाया गया। तो हमें अबस बेकार नहीं बनाया गया, हमें एक मकसद के तहत अल्लाह तबारक व ताला ने एक ख़ास ड्यूरेशन के लिए, एक ख़ास पीरियड के लिए, एक ये जो हमें ज़िंदगी दी है, अगरचे हमें इसका पता नहीं कि इसका एंड कब होगा, लेकिन वक्त तो मुकर्रर है। तो इस ख़ास ड्यूरेशन में एक ख़ास मकसद के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने हमें ये ज़िंदगी अता की है, इस दुनिया में भेजा है। अल्लाह तबारक व ताला सूरह मुल्क में इरशाद फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वो यानी अल्लाह तबारक व ताला जिसने मौत और हयात को बनाया ताकि ये जाँच हो कि तुम में कौन अच्छे अमल करता है। तो ये दुनिया जो है इसका, ये यूं ही हम इसमें नहीं आ गए, यानी ये जो एक कंसेप्ट है कि बस ज़िंदगी को एंजॉय किया जाए, जवानी को एंजॉय किया जाए, तो ये जो है ये दीन इस्लाम की तालीमात के मुताबिक नहीं है। दीन इस्लाम की तालीमात के मुताबिक तो ये है कि हम जो है वो अल्लाह की रज़ा के लिए उसकी यानी नेकी के काम करें, इबादत पर अपनी ज़िंदगी को गुजारें। अल्लाह ताला ने हमें इसके लिए जो है वो पैदा किया। तो जवानी जो प्राइम एज है, इसमें खसूसियत के साथ हम अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करें, ये यानी इस जवानी का तकाजा है। अब यानी जवानी में आज़ा मजबूत होते हैं, बंदा थकता नहीं है, फिर सुबहानअल्लाह अज़्ज़ा वजल अक्ल व शऊर भी जो है ना वो बहुत हद तक समझदार भी होता है। अब छोटा बच्चा है वो वैसे तो सारा दिन नहीं थकता, कभी उछल के इधर जा रहा होता है, कभी उधर जा रहा होता है, एक यानी कह सकते हैं कि लम्हे के लिए भी उसको सुकून नहीं आता, लेकिन अक्ल व शऊर अभी वो पुख्ता नहीं हुआ होता। तो अब उस एज में यानी आप देखते होंगे बच्चों को, हर घर में तकरीबन बच्चे होते हैं, तो बच्चे आप जितना भी समझाएं लेकिन उन्होंने फिर भी करनी अपनी ही होती है, क्योंकि अभी वो यानी जो उनकी जहनी पुख्तगी है उस एज को नहीं पहुंचे। तो बच्चे अगरचे बहुत एक्टिव होते हैं यानी थकते नहीं हैं, लेकिन जहनी पुख्तगी नहीं है, और बुढ़ापे में या उधेड़ उम्र में जहन तो पुख्ता हो गया, बड़े तजर्बाकार हैं, बड़े अक्लमंद हैं, लेकिन फिर आज़ा उस तरह साथ नहीं देते। कभी कमर में दर्द हो रहा होता है, कभी टांगों में दर्द हो रहा होता है, कभी कोई और बीमारी जो है वो यानी लग जाती है, थोड़ा सर्दी ज़्यादा हो जाए तो नज़ला हो जाता है, कभी जवानी में भी नज़ला हो जाता है लेकिन बंदा उसको बर्दाश्त कर लेता है। थोड़ा सा बुखार हो जाए उधेड़ उम्र में या बुढ़ापे में तो उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। ये जो गुफ्तगू है ये जवानों को इतनी समझ में नहीं आती, यानी बंदा जब जिस कैफियत से गुजरा नहीं होता ना, जो उसका अपना एक्सपीरियंस नहीं होता, बाज़ औक़ात अगर उस पर उसको समझाया जा रहा होता तो फिर भी वो सही तौर पर उसको समझ नहीं पाता, लेकिन जब वो उस स्टेज तक पहुंचता है फिर उसको समझ आती है कि ये जो है यानी कैफियत होती क्या है। तो उधेड़ उम्र में क्या है कि फिर बीमारियां बहुत सारी जो हैं वो लग जाती हैं, बंदा कमज़ोरी की तरफ जा रहा होता है, और बुढ़ापा तो वैसे ही बुढ़ापे को कहा जाता है कि बीमारियों का घर है, और फिर बुढ़ापे में बाज़ों का जहनी बीमारियां भी जो हैं वो लाहक हो जाती हैं, बंदा भूल जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो बुढ़ापे में अगर वो जाकर या उधेड़ उम्र में यानी ये जहन बनता है कि उसमें इबादत करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है फिर उस वक्त इबादत करना। मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह सूफ़ी शायर हैं, उनका शेर है यानी कमर में दर्द के हवाले से, कि कोई आँखें लक्के पीड़, कोई आँखें चुक, सच्ची गल मोहम्मद बख्शा अंदरों गई है मुख, यानी जब बुढ़ापा आता है तो क्या होता है कि कमर में दर्द हो रहा है, तो कोई आंखें लग के पीड़ पीड़ दर्द को कहते हैं, पेन को कहते हैं। तो कोई जो है वो कह रहा है कि ये कमर में दर्द है, कोई कह रहा है कि चुक पै गई है, लेकिन हकीकत क्या है कि सच्ची गल मोहम्मद बख्शा अंदरों गई है मुख, यानी वो जो जवानी की उम्र थी वो अब उस स्टेज से हम गुजर कर बुढ़ापे, उधेड़ उम्र और बुढ़ापे तक पहुंच गए। तो अब ये है कि वो जो अंदर ताकत थी ना वो खत्म हो गई है, और अब क्या है कि थोड़ी सी भी आजमाइश जो है, कभी टांगों में दर्द हो रहा है, कभी बाजू में दर्द हो रहा है, कभी कमर में दर्द हो रहा है, तो इस कैफियत में फिर इबादत करना भी मुश्किल हो जाता है। तो प्यारे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, जवानी में जो ये प्राइम एज है, इसमें अपनी अपना जो मकसद है ज़िंदगी का, उस मकसद को हासिल करने के लिए हम अल्लाह की इबादत में लग जाएं। और सुभान अल्लाह अज़्ज़ा वजल, जो जवानी में अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करता है, सुभान अल्लाह, उसको यानी बरकतें कितनी मिलती हैं, उसको यानी अल्लाह तबारक व ताला उससे कितना राज़ी होता है। एक रिवायत सुनिए, हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, इनसे रिवायत है, हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़बान से अल्लाह तबारक व ताला का फरमान, यानी फरमान तो अल्लाह का है लेकिन प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, हदीस कुदसी, हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान, अल्लाह अज़्ज़ वजल इरशाद फरमाता है, मेरी तकदीर पर ईमान लाने वाला, मेरे लिखे पर राज़ी रहने वाला, मेरे दिए हुए रिस्क पर कनात इख्तियार करने वाला, और मेरी रिज़ा की खातिर अपनी नफसानी शहवात को तर्क करने वाला नौजवान मेरी बारगाह में मेरे बाज़ फरिश्तों की मानिंद है। सुभान अल्लाह अज़्ज़ वजल। वाकई अगर बंदा अल्लाह तबारक व ताला का मुती बन जाए, फरमाबरदार बन जाए, अल्लाह तबारक व ताला के अहकाम की पैरवी करे, नाफरमानी से बच जाए, उसके महबूब रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा गुलाम बने, तो वो फरिश्तों की मानित बल्कि बाज़ फरिश्तों से भी अफजल हो जाता है। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, जवानी जो है ये प्राइम एज है, और इसमें इबादत करने वाले से जो है वो अल्लाह तबारक व ताला राज़ी होता है। एक और रिवायत सुनिए, सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, इन्हीं से रिवायत है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक फरमान, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ऐसे शख्स से मोहब्बत फरमाता है जिसने अपनी जवानी को इताअत खुदावंदी के लिए वक्फ कर दिया हो। सुभान अल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो प्यारे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, बिलखुसूस मेरे वो हमारे वो नाज़रीन जो जवानी की उम्र में हैं, अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में जवानी को लगाएं। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, जवानी में गुनाहों से बचे, अपने रब अज़्ज़ा वजल को याद रखे, क्योंकि जवानी में आज़ा कवी यानी ताकतवर और नफ्स गुनाहों की तरफ ज़्यादा माइल होता है, इसलिए इस ज़माने की जो इबादत है यानी जवानी की जो इबादत है, आप फरमाते हैं ये बुढ़ापे की इबादत से अफजल है। तो प्यारे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, बिलखुसूस हमारे नौजवान सब जो है वो अपना ये जहन बना लें कि हमें अल्लाह तबारक व ताला की इताअत में अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, और बिलखुसूस जवानी में अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करनी है। अब जवानी में सुबहान अल्लाह अज़्ज़ा वजल जो एक प्राइम एज है, इसमें एक बड़ी ज़िम्मेदारी तो ये है कि हम अपनी इस्लाह में लग जाएं, हम अल्लाह तबारक व ताला की इताअत में लग जाएं, हम अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में लग जाएं। सुबहान अल्लाह अज़्ज़ा वजल, जो जवानी में अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करता है, एक इनाम उसके लिए ये भी है कि अल्लाह तबारक व ताला बुढ़ापे में भी उसको आफियत अता फरमाता है, बिलखुसूस तिलावत कुरान। इसके हवाले से रिवायत सुनिए, हज़रत सैयदना इकरमा रदी अल्लाह ताला अन्हु ये फरमाते हैं, जो मुसलमान तिलावत कुरान का आदी हो उस पर इंशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल ये यानी जवानी में हासिल किए गए इल्म को बुढ़ापे में भूलने की हालत तारी नहीं होगी। यानी बाज़ लोग ऐसे होते हैं, कैफियत ऐसी बन जाती है बुढ़ापे में कि वो उनकी मेमोरी जो है ना, वो याददाश्त उनकी कमज़ोर हो जाती है, वो भूल जाते हैं। बाज़ ऐसे होते हैं कि जो बचपन की या लड़कपन की या नौजवानी की बातें याद होती हैं, जो उस वक्त की मेमोरी होती है उस वक्त की बातें भूल जाते हैं। बाज़ ऐसे होते हैं जिनकी याददाश्त वैसे ही चली जाती है। जो सुबहान अल्लाह अज़्ज़ वजल तिलावत कुरान का आदी होगा, जो जवानी में तिलावत कुरान करता रहा होगा, अल्लाह तबारक व तआला बुढ़ापे में उससे जो है इस बुढ़ापे में भूल जाने के मरज़ से महफूज रखेगा। हज़रत अल्लामा इब्ने रजब हम्बली रहमतुल्लाहि ताला अलैह जवानी में इबादत से मुतालिक फरमाते हैं, जिसने अल्लाह अज़्ज़ा वजल को उस वक्त याद रखा जब वो जवान और तवाना था यानी सेहतमंद था, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस वक्त उसका ख्याल रखेगा जब वो बूढ़ा और कमज़ोर हो जाएगा। और इसे बुढ़ापे में भी अच्छी कुव्वते समाअत यानी सुनने की जो ताकत है, अच्छी कुव्वते समाअत बसारत यानी आँखों की बिनाई, ताकत और जहानत अता फरमाएगा। सुभानअल्लाह अज़्ज़ा वजल। हज़रत अबू तैयब तिबरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इन्होंने 100 साल से ज़ायद उम्र पाई। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ज़हनी और जिस्मानी लिहाज से तंदुरुस्त और तवाना थे, 100 साल से ज़ायद की उम्र थी, और इस एज में भी आप यानी ज़हनी लिहाज से भी सेहतमंद थे और जिस्मानी लिहाज से भी। किसी ने आपसे इस सेहत का राज पूछा कि इतने बूढ़े हैं, 100 साल से ज़ायद उम्र है, और इस एज में भी आप माशाअल्लाह अज़्ज़ोजल ज़हन भी जो है वो अच्छा है और जिस्म भी सेहतमंद है, तो आपने इसके जवाब में क्या इरशाद फरमाया, इसका राज पूछा, तो आपने जवाब में इरशाद फरमाया, मैंने जवानी में अपनी जिस्मानी सलाहियतों को गुनाह से महफूज रखा, आज जब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो अल्लाह अज़्ज़ वजल ने इन्हें मेरे लिए बाकी रखा है। सुभान अल्लाह। तो बंदा जब जवानी में अल्लाह ताला की नाफरमानी से बच जाता है, इबादत करता है, अल्लाह ताला की इताअत को इख्तियार करता है, तो सुभान अल्लाह अज़्ज़ वजल, जो बुढ़ापे की उम्र में भी अल्लाह तबारक व ताला उसे आफियत अता फरमाता है, जिस्म ज़ाहिरी बीमारियों से और एक माजूरी से बच जाता है, जहन भी सलामत रहता है। सुभान अल्लाह अज़्ज़ वजल, जो जवानी में इबादत करता रहा, ताकत थी उसमें, उसने इबादत की, रातों को क़याम किया, दिन में रोज़ा रखा या दीगर इबादत की, तो जब वो बुढ़ापे में पहुंचता है, उस वक्त वो बुढ़ापे की कमज़ोरी की वजह से या बीमारी की वजह से, अलालत की वजह से वो नेकियां नहीं कर पा रहा होता, ऐसे में भी सुभान अल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह तबारक व ताला उसे जवानी में जो जिस तरह वो इबादत किया करता था उस तरह का सवाब अता फरमाता है। जैसा कि हकीम उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान इमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मिरातुल मनाजी में फरमाते हैं, जो बूढ़ा आदमी बुढ़ापे की वजह से ज़्यादा इबादत न कर सके मगर जवानी में बड़ी इबादतें करता रहा हो, तो अल्लाह तबारक व ताला उसे माजूर करार देकर उसके नामे आमाल में वो ही जवानी की इबादत लिखता है जो जवानी में करता था। सुभान अल्लाह अज़्ज़ा वजल। शेख सादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का एक शेर भी मुफ्ती साहब ने इसके साथ जो है वो नकल किया है। शेख सादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, ग़ुलामों के मालिकों का तरीक़ा ये है कि वो बूढ़े ग़ुलाम को आज़ाद कर देते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ दुनिया को आरास्ता करने वाले, ज़ईफ़ उमर सादी की भी बख्शिश और मगफ़रत फरमा दे। तो प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, जवानी को गनीमत जानते हुए जितनी ज़्यादा हो सके अल्लाह तबारक व ताला की इबादत कर लीजिए, ताकि कल उधेड़ उम्र में, बुढ़ापे में, पहले तो खैर पता नहीं है कि जवानी में ही अपनी यानी दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, ज़िंदगी का खात्मा हो जाएगा, लेकिन अगर बिलफर्ज ज़िंदगी मिलती है, बुढ़ापे यानी उधेड़ उम्र से बुढ़ापे की दहलीज तक पहुँचते हैं, तो जवानी में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर लीजिए, इंशाल्लाह उस वक्त जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से, बीमारी की वजह से ज़्यादा इबादत न भी कर पाए, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ोजल इन इबादत का जो है वो सवाब मिलता रहेगा। अच्छा, अब एक बहुत अहम बात जो बिलखसूस नौजवानों, वैसे तो हर एक के लिए है, लेकिन बिलखसूस नौजवानों से मुखातिब करते हुए अर्ज़ करूँगा कि जवानी में बंदा बाज़ औक़ात इस धोखे में होता है कि अभी ज़िंदगी बहुत पड़ी है तो मैं बाद में तौबा कर लूँगा, और फिर ये जो ख़्याल है एक यानी उधेड़ उम्र और उसके बाद बुढ़ापा, वहाँ मैंने बूढ़ा होऊंगा, तो ये जो एक बहुत लंबी उम्मीद वो बांधता है, तो इसमें यानी वो जो जिसके ख्यालात इस तरह के होते हैं, फिर वो तौबा की तरफ मायल नहीं होता, ये ख्याल तौबा में रुकावट बनता है। तो चाहे जवान हैं या बूढ़े हैं, उधेड़ उम्र के हैं, सब गौर फरमाएं इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें, कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाए, किस मोड़ पर जो है वो मौत आ जाए, तो हम अल्लाह ताला की बारगाह में यानी देर ना करें और फौरी तौबा कर लें। अब बिलफर्ज किसी का अगर ये ज़हन है कि एज जो है वो उधेड़ उम्र और बुढ़ापे तक पहुंचने की उसने उम्मीद लगा रखी है, तो इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला ने बड़े प्यारे अंदाज में जो है वो समझाया है ऐसों को जो यानी तौबा को टालते हैं लंबी उम्र की उम्मीद पर। तो आप फरमाते हैं, यानी एक पौधा है, एक दरख्त है, यानी उसका पौधा है, जब वो बीज से कौंपल निकलती है, बिल्कुल यानी नन्ना मुन्ना वो पौधा निकलता है, तो उस वक्त अगर कोई ऐसा पौधा है कि जो यानी नुकसानदेह है, तो उसको उखाड़ना, उसको यानी बहुत आसान होगा उसको यानी ख़त्म कर देना, उसको तल्फ कर देना। मुर्गी की यानी वो उसको चुगेगी तो ख़त्म हो जाएगा, मुर्गी का पाँव आएगा तो ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा सा वो बड़ा होगा तो अब वो ज़ाहिर उस तरह ख़त्म नहीं होगा। अब क्या है कि कोई बकरी तो हो सकता है उसको खाए तो ख़त्म हो जाए, या कोई किसी कोई उसको शख्स आके उखाड़ दे तो ख़त्म हो, लेकिन अब वो मुर्गी से नहीं उखाड़ा जाएगा। और थोड़ा सा बड़ा होगा तो शायद बकरी के खाने से भी वो ख़त्म नहीं होगा, फलता फूलता रहेगा। यानी जब जब वो छोटा सा नन्ना सा कौपल फूटी थी पौधा था, तो उस वक्त उसको बहुत आसान था ख़त्म करना। फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर कदरे मुश्किल हुआ, लेकिन फिर भी उसको उखाड़ा जा सकता था। जब वो तनावर दरख्त बन जाए, तो अब उस दरख्त को उखाड़ना जो है ना, वो बंदे की बस की भी बात नहीं होती। फिर मशीनरी जो है वो इस्तेमाल करनी पड़ती है, बहुत सारे लोग मिलकर फिर उसको हिलाना चाहे तो हिला भी नहीं सकते। तो इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये मिसाल बयान करते हुए ये इरशाद फरमाया, जो जवानी में तौबा नहीं करते और इस उम्मीद पर गुनाह करते हैं, इस उम्मीद पर अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी में पड़े रहते हैं कि बुढ़ापे में या उधेड़ उम्र में जाके वो तौबा कर लेंगे, तो वो तौबा में ताखीर ना करें। आज उनके लिए गुनाह से बचना मुश्किल हो रहा है, जबकि गुनाह की आदत उतनी पक्की नहीं है। जब वो उस पौधे की तरह तनावर दरख्त बन गई, तो अब उस उम्र में ये कमज़ोर हो चुके होंगे, यानी उधेड़ उम्र में ये कमज़ोर हो चुके होंगे, बुढ़ापे में ये कमज़ोर हो चुके होंगे, और वो जो गुनाह की आदत है वो मजीद पुख्ता हो चुकी होगी तनावर दरख्त की तरह। तो अब जब ये कमज़ोर होंगे, वो मजबूत हो चुका होगा दरख्त, तो उसको उखाड़ना कितना मुश्किल होगा। अब जब जवानी में खुद ताकत में है और वो जो गुनाहों की आदत है वो उतनी ज़्यादा पुख्ता नहीं है, तो उसको उखाड़ना, उसको ख़त्म करना, गुनाहों को छोड़ना आसान है। तो हम जितने भी जवान हैं, सबसे मैं खसूसियत के साथ अर्ज़ करूंगा मजमूई तौर पर तमाम नाज़रीन से, कि हम तौबा में ताखीर न करें, अल्लाह ताला की बारगाह में गिड़गिड़ा कर तौबा कर लें, अल्लाह तबारक व ताला की रहमत पर उम्मीद रखें। हम तौबा करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इस तौबा पर इस्तिकामत भी मिल जाएगी। सुबहानअल्लाह, दावत इस्लामी का जो दीनी माहौल है, आप इसमें देखते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में नौजवान और जवान दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता होकर गुनाहों को छोड़ देते हैं, नेकियों को इख्तियार करते हैं। ये नहीं, यही नहीं, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल वो नेकी की दावत देने वाले बन जाते हैं। यानी खुद तो नेकियाँ करते ही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल दीन के मुबल्लिग़ बनकर वो अल्हम्दुलिल्लाह नेकी की दावत देते हुए, लोगों को बुराई से मना करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह मदनी काफिलों में सफ़र इख्तियार करते हैं। कई ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगियों को दीन की खिदमत के लिए वक्फ़ कर देते हैं। तो जवान जो हैं वो दावत इस्लामी के दीनी माहौल को इख्तियार करें, बूढ़े भी इख्तियार करें, जवान बिलखुसूस ये अपनी सलाहियतों को अल्लाह की रज़ा के लिए इस्तेमाल करें। क्या ही अच्छा हो कि हमारी जवानी में जो ताकत है, जो हमारी सलाहियतें हैं, जो जहनी इस्तेदाद है, ये अल्लाह के दीन के लिए इस्तेमाल हो, कहीं और किसी आपने स्किल्स कहीं और इस्तेमाल करेंगे वो, यानी अगर कोई जायज़ काम है तो ठीक है, लेकिन यहाँ अगर आपके स्किल्स इस्तेमाल होंगे तबलीग दीन के लिए, नेकी की दावत के लिए, दावत इस्लामी के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को मजीद आगे बढ़ाने के लिए, तो प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, गौर फरमाइए कि कितना बड़ा जो है हमारे लिए ये एहसास की बात होगी। सुभान अल्लाह अज़्ज़ व जल, और ये हो सकता है कि ये हमारे लिए हमारी बख्शिश का जरिया बन जाए, हमारे लिए हमारी आने वाली नस्लों के लिए बख्शिश का जरिया बन जाए। तो बेहतरीन नौजवानों के लिए, नौजवानी का एक बेहतरीन इस्तेमाल ये है कि हम दावत इस्लामी के दीनी माहौल को इख्तियार करके नेकी की दावत दें, अपनी और दुनिया भर के लोगों की इस्लाह की कोशिश में लग जाएँ। अल्लाह तबारक व ताला हमें अपनी ज़िंदगी को गनीमत जानते हुए इस ज़िंदगी का सही इस्तेमाल अल्लाह ताला की इताअत में करने की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से हमें महफूज रखे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही वसल्लम।
मेरी जिम्मेदारी